आनंदमय 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 भगवान की प्राप्ति शीघ्र की शीघ्र अनंत प्रेम होने से हो सकती है। एक तो जो प्रेम है गौण प्रेम होता है और एक सामान्य प्रेम और एक मुख्य प्रेम होता है और एक अनन्य प्रेम होता है। अनन्य प्रेम सबसे बढ़कर समझा जाता है। अनन्य भी हो और विशुद्ध हो फिर कहें क्या है। विशुद्ध उसको कहते हैं कि कोई प्रकार की कामना न हुए, कोई कामना न लेकर के प्रेम हुए तो कामना ही कलंक है, वो प्रेम शुद्ध नहीं है। सैकाम जो प्रेम है, भगवान में प्रेम तो है किंतु पुत्र के लिए है या धन के लिए है या मान बढ़ाई के लिए है या आरोग्यता के लिए या स्वर्ग के लिए, ये सभी एक प्रकार से जो हेतु है सैकाम। तो निष्काम प्रेम होना चाहिए और वो प्रेम अनन्य होना चाहिए। गौण प्रेम जो है ये सबसे निची श्रेणी का है कि जैसे साधारण मनुष्यों का जो प्रेम है वो गौण है, उनका मुख्य प्रेम है संसार में, शरीर में और भोगा में, मान बढ़ाई में, इनमें मुख्य प्रेम है। और भगवान के बीच के मन जो है वो गौण प्रेम है। जिनका भजन जो है बहुत कम होता है, भगवान की स्मृति बहुत कम होती है और संसार के विषय भोगों की स्मृति अधिक होती है और संसार के विषय भोगों में ही रसे पचे रहते हैं, रुपयों की आसक्ति के कारण से धर्म कर्म और भगवान को भी छोड़ बैठते हैं, तो उनका धर्म में और भगवान में गौण प्रेम है। कोई भी संसारिक जरूरी काम होता है तो अपने वो टेम भजन ध्यान में से संध्या गायत्री में से निकालता है। भगवान का जो नित्यक्रम जो हम लोग करते हैं प्रातः काल सायंकाल, तो सबसे समझो कि संसारिक जो जरूरी काम उसको समझता है और जो कुछ टेम आपने बताऊ समझी देती है कि ये नित्यक्रम की और सत्संग और स्वाध्याय की ये फालतू टेम समझ देते हैं, तो ये आपने वास्तव में तो प्रेम ही नहीं है किंतु गौण प्रेम कहा जा सकता है। जो आपने नित्यक्रम में से जो टेम निकाली जावे और नित्यक्रम की अवहेलना की जावे उसको गौण समझा जावे तो वो इसके वहां गौण प्रेम है। पर भगवान की स्मृति कोशिश करने के ऊपर भी बहुत कम होती है तो ये गौण प्रेम है। इस गौण प्रेम से समझो कि कार्य की सिद्धि शीघ्र नहीं होती, इसके लिए बहुत काल लग जाता है, शायद एक जन्म न भी होवे। दूसरा जो इससे बढ़कर प्रेम है वो सामान्य प्रेम है। सामान्य प्रेम उसको कहते हैं कि संसार के विषय भोगों में भी प्रेम है और भगवान में भी प्रेम है, दोनों के बीच के मां जिनका प्रेम है, जो ये चाहते हैं कि संसार के विषय भोग कायम रहते हुए भगवान मिले तो मिल सकते हैं। जैसे हम लोगों के मां बहुत से भाइयों का जो अपने सामान्य प्रेम है वे आराम भी चाहते हैं और भगवान का दर्शन भी चाहते हैं। यदि कष्ट सह करके भगवान की प्राप्ति हो गए तो कष्ट सहना स्वीकार नहीं। तो ये जो है सामान्य प्रेम है, ऐस आराम स्वाद सोखी संसार के विषय भोगों के मां एक तरफ प्रेम है और दूसरी तरफ भगवान के भजन में, ध्यान में, सेवा में, सत्संग में, स्वाध्याय में प्रेम है। कोई समय के बीच के मां सत्संग की बात सुनी जाती है तो उस समय में भगवान की तरफ कुछ अधिक प्रेम हो जाता है और संसार के आराम की भोगों की अवहेलना कर देता है, चित्त में थोड़ा वैराग्य आ जाता है और वो विशेष समय नहीं ठहरता। और जिस समय में संसार के विषय भोगों की तरफ में झोंक हो जाती है तो उस तरफ में चल जाता है। उस समय के बीच के मां ये भगवान के भजन ध्यान में, सत्संग में और स्वाध्याय में प्रेम कम हो जाता है। तो ऐसे हम देखते हैं बहुत से भाइयों का एक समय में बहुत अधिक प्रेम देखने में आया और दूसरे समय में वह कम हो गया, और भूतों का पहले कम देखने में आया, दूसरे समय में अधिक हो गया। तो इस प्रकार से थी, कभी एक प्रकार से दसाना बाराना प्रेम भगवान की तरफ हो जावे और संसार की तरफ चाराना ही रह जावे, और कोई वक्त के बीच में संसार की तरफ दसाना बाराना हो जावे और भगवान की तरफ चाराना छाना ही रह जावे। तो ये दोनों का नहीं एक प्रकार से प्रेम घटता बढ़ता रहे, ये साधारण माने समान एक प्रकार से प्रेम है। गौण प्रेम से कुछ ये बढ़िया है, पर ये भी कोई प्रशंसा के लायक नहीं। प्रशंसा के लायक जो प्रेम है वो मुख्य प्रेम है। तो संसार के भोगों के मां गौण और परमात्मा के बीच के मां मुख्य। मुख्य प्रेम वाला का ये भाव रहता है कि वह परमात्मा के वास्ते सब कुछ छोड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, अपने प्राणों की भी बाजी लगा देता है, और स्त्री पुत्र धन रुपया ये तो चीज ही क्या भगवान के मुकाबले में, इन सबको ठुकरा देता है और चित्त के वहां बैराग रहता है। बैराग के नशे में प्राय चूर रहता है और संसार के विषय भोगों की अवहेलना करता रहता है, उनको ठुकराता ही रहता है, उनकी वहां कोई दर नहीं, कीमत नहीं। तुलसी हरि की भक्ति में ये पांचों ने सुहात, विषय भोग निद्रा होती, जगत प्रीत बहु बात। भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति के मां उनको ये पांचों बातें अच्छी नहीं लगती, संसार के विषय भोग अच्छे नहीं लगते, निद्रा हंसी ये अच्छे नहीं लगते, और जगत की फालतू बातें अच्छी नहीं लगती, और जगत के मां उसकी स्त्री पुत्र धनिता आदि में प्रीति नहीं रहती, उसकी बातें भी अच्छी नहीं लगती और फालतू बातें ये भी अच्छी नहीं लगती। तो ये पांचों ही बातें उनको अच्छी नहीं लगती। किसके बीच के मां संसार से बहिराग से रहता है और भगवान के विरह में व्याकुल रह करके और भगवान के लिए खोज करता रहता है कि भगवान कैसे मिले, क्या करने से भगवान मिले, मैं क्या करूं भगवान के लिए। वो एक प्रकार से भगवान के वास्ते हर वक्त वो कटिबद्ध होकर के तैयार रहता है और भगवान के भजन में उसका मन भी लगता है, प्यारा लगता है भगवान का भजन। भजन ध्यान सेवा सत्संग इतने प्यारे लगते हैं कि उसके इष्ट हो जाता है, उनको वो छोड़ नहीं सकता, संसार के पदार्थों को छोड़ सकता है, कुटुंब का त्याग कर सकता है, ऐश्वर्य का त्याग कर सकता है, काम पड़ने के ऊपर प्राणों का भी त्याग कर सकता है। इन सब चीजों के मां उनकी सत्ता रहते हुए भी इनमें प्रीति नहीं है, जिसके मां वैराग है, और वो वैराग एक प्रकार से उत्तम वैराग है और परमात्मा के भजन ध्यान के नशे के बीच के मां रहता है। किंतु उसको भजन ध्यान कभी तो करना पड़ता है, कभी अपने आप ही होने लग जाता है, कभी कभी करना पड़ता है और कभी ऐसा होता है कि अपने आप ही अभ्यास होने लग जाता है, और भगवान उसको बड़े प्यारे लगते हैं। भगवान का समझो की जो ध्यान है, भगवान की स्तुति प्रार्थना सुनने के समय में खूब प्रिय लगे, कहने के समय भी प्रिय लगे, मनन करने में भी प्रिय लगे, पुस्तक बांटना भी प्रिय लगे, भगवान की बात एक प्रकार से बहुत ही प्रिय लगे और उसके खूब एक प्रकार से लगन रहती है कि भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले। तो इस प्रकार का जिसके इष्ट ग्रह है तो ये मुख्य प्रेम है। आज का इस कलयुग के बीच के मां मुख्य प्रेम होने के बाद भगवान की प्राप्ति उसको शीघ्र हो जाती है, उसके राज्य में लगन रहता है, ये उसके धुन रहती है। जैसे लोभी आदमी के रुपया कमाने की धुन रहे, कामी आदमी के स्त्री स्वयं की धुन रहे, मान बढ़ाई वाला जो पुरुष है वो मान बढ़ाई के लिए एक प्रकार से उसका दास होकर आते रहता है, तो उसको ये कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, उसको केवल एक भगवान अच्छे लगते हैं। और भगवान के लिए एक प्रकार से वो कभी कभी तो पागल सा हो जाता है, कभी मुग्ध हो जाता है, कभी एक प्रकार से प्रेम के भी मां उन्मंत होता फिरता है। वो ये समझता है कि भी अपना जो जीवन है ये भजन ध्यान सेवा सत्संग स्वाध्याय संयम इनके मैं अपना जीवन बिताना, और ये उसके मन के अनुकूल प्यारे लगते हैं और कोई संसार की चीज को प्यारी नहीं लगती। संसार के मां तो बहिराग रहता है, ऊपर की रहती है, और भगवान के मिलने की बड़ी भारी इच्छा रहती है, भगवान में प्रेम भी रहता है, प्यारे लगते हैं भगवान, और भगवान के मिलने की अच्छी माने लगन है। तो ये जो है ये मुख्य प्रेम, इनसे भी जो परे है वो अनन्य प्रेम। जब अनन्य प्रेम हो जाता है फिर भगवान के मिलने में विलंब नहीं होता। अनन्य प्रेम जैसे गोपियों का था, अनन्य प्रेम जैसे सुतीक्ष्ण का था, अनन्य जो प्रेम है जैसे हनुमान जी का था, भरत जी का था, रुक्मिणी जी का था, तो ये सब अनन्य प्रेम। अनन्य प्रेम होने के बाद में फिर ज्यादा विलंब नहीं होता, विलंब होने से उनके प्राण नहीं रह सकते, एकदम व्याकुल हो जाता है, और व्याकुल होकर के भगवान के गृह के मां इतना व्याकुल हो जाता है कि उसके प्राण सरपट आते हैं, और गृह की व्याकुलता के बीच के मां भगवान की स्मृति स्वाभाविक होती है, उसको भगवान को याद नहीं करना पड़ता, भगवान की भूली नहीं होती। जैसे परस्पर के मां जो गोपियां एक दूसरे को कहा करती थी कि वो कृष्ण जो है जबन याद रहता है, मैं क्या उपाय करूं, न तो वो दर्शन देता है और न उसको हम भुला ही सकते, क्योंकि उसकी स्मृति में एक प्रकार का रस आता है और विरह की व्याकुलता के मां रस आता है, तो विरह की उसके वेदना रहती है और भगवान समझो कि वहां विलंब नहीं कर सकते, उससे विलंब बर्दाश्त नहीं हो सकता। जहां अनंत प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है, जैसे प्रेम लक्षण भक्ति के लक्षण आपने बतलाए थे, उस प्रकार के लक्षण उसके हो जाते हैं, उनकी दशा बेदशा हो जाती है, यानी कभी हंसता है तो कभी रोता है, उसके ऐसी धुन सवार हो जाती है कि उसको कोई बात अच्छी नहीं लगती, और भगवान के मिलने की तीव्र इच्छा हो जाती है, कभी कभी एक प्रकार से तीव्रतर इच्छा हो जाती है भगवान के मिलने की, और वैराग्य उसके तीव्र हो जाता है और साधन उसका तीव्र हो जाता है, और प्रेम उसका अनन्य हो जाता है, और वो विशुद्ध प्रेम होता है, कोई बात की आकांक्षा नहीं, इच्छा नहीं, उसके जीवन की भी इच्छा नहीं, केवल मात्र एक प्रकार से भगवान का वियोग बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवान का ध्यान तो अपने आप ही होता है, उसको ध्यान करना नहीं पड़ता। वो आंखों से थी भगवान का स्वरूप देखता है, कानों से थी भगवान की बातों को सुनता है, वाणी से भगवान की चर्चा करता रहता है, मन से भगवान का ही मनन करता रहता है, और बुद्धि से भगवान का हर वक्त अटल निश्चय है। उसकी रात की नींद चली जाती है, दिन की भूख चली जाती है, उसको समझो कि भूख का ज्ञान नहीं रहता, प्यास का ज्ञान नहीं रहता, अपने शरीर का कभी ज्ञान हो जाता है कभी नहीं रहता है, और भगवान के मिलने की बड़ी उत्कट इच्छा हो जाती है, भगवान के लिए वो पागल सा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में भगवान को विलंब नहीं कर, आज का अतिश्य घोर किली काल के बीच के मत हो, ऐसी अवस्था के पूर्व ही भगवान मिल जाते हैं, किंतु इस अवस्था में बड़ा आनंद। ये विवेक की व्याकुलता का एक अद्भुत अलौकिक आनंद है। ये आनंद संयोग में नहीं है, क्योंकि वियोग के बीच के मां तो भगवान के मिलने की इच्छा रहती है, संयोग होने के बाद वो इच्छा नहीं रहती। वियोग के बीच के मां भगवान की स्मृति स्वाभाविक होती रहती है, और संयोग में भगवान जब मिल ही रहे हैं तो ध्यान की आवश्यकता नहीं रहती, स्मृति की आवश्यकता नहीं रहती, जब भगवान एकदम मजूरी है। वियोग के मां विरह की व्याकुलता का जो एक रस है वो वियोग में आता है, संयोग में नहीं आता। इस प्रकार की जब भक्ति होती है तो वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। भक्ति के मार्ग से जब भगवान को प्राप्त हो जाता है तो उस भगवत प्राप्त पुरुषों के जो लक्षण गीता के मां बतलाए, गीता की बाद में अध्याय के मां 13 की श्लोक से थी, तो लक्षण से बतलाए गए कैसे उसके लक्षण होते हैं प्राप्ति के बाद, और प्राप्ति के पूर्व के लक्षण तो मैंने आपको बतलाए। प्रेम लक्षण भक्ति वाले पुरुष के जैसे लक्षण होते हैं ऐसे लक्षण होते हैं, उसके कैसे होते हैं। तन लाज तीन लोक की न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की न देव यक्ष ते डरे, सुने न कान और की दृशे न और इच्छना, कहे न मुख और बात भक्ति प्रेम लक्षण। न लाज तीन लोक की, उसको अपने राज और शर्म का ज्ञान नहीं रहता कि वो कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, लोग मुझको क्या कहेंगे, लोग लाज जो है वो विदा हो जाती, और शास्त्र की जो मर्यादा है प्रेम के मां इतना मुग्ध हो जाता है कि नीति और शास्त्र की मर्यादा का उसको ज्ञान नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। तो तीनों लोगों के बीच के मां समझो कि यह तो एक प्रकार से कि लाज का ज्ञान देता है, धर्म का ज्ञान देता है, और न एक प्रकार से शास्त्र का विशेष ज्ञान देता है, मर्यादा का ज्ञान नहीं रहता है, वो एक प्रकार से लोक मर्यादा के बाहर चला जाता है, उसको ज्ञान नहीं रहता, उसका ज्ञान करके त्याग नहीं करता। उसके दिल के बीच के मां न किसी की शंका होती, न किसी का भय होता, भूत है प्रेत है कोई उसको कहीं भय नहीं, वो कहीं एक प्रकार से विचरता रहता है, भगवान का अनुभव करता रहता है मन से, तो निर्भय होकर के विचरता है। देवता जो है, यक्ष जो है, राक्षस जो है, पिशाच जो है, और भी जितने संसार के बीच के मां भयदायक है, किसी का भी उसको भय नहीं होता,
वो निर्भय अवस्था के मन भीतरता है, निर्भय होकर के भीतरता है, उसको तो भगवान ही भगवान का अनुभव रहता है, तो भगवान से क्या भय हुए, उसको तो सिर्फ तो भगवान अपने मन से दिखते हैं, अनुभव से दिखते हैं, प्रत्यक्ष नहीं है, भगवान के मिलने के लिए व्याकुल है, ध्यान भगवान का है, और वो बलात्कार से है, ध्यान भूलता ही नहीं, बुलाने से भी वो चीज का उसको ज्ञान ही नहीं देता भगवान के सिवा, किंतु फिर भी भगवान का साक्षात दर्शन नहीं है। जो लोग कहते हैं बकते हैं उसके कानों में वाज नहीं पूछते, जो समझता ही नहीं है लोग क्या बक रहे हैं, भगवान की बात तो सुनता है पर भगवान की बात के साथ दूसरी जो बात है उसके कानों के मन पूछती नहीं, पूछती है तो वो समझता ही नहीं, अवहेलना कर देता है। और उसको समझो कि और कोई बात दिखती भी नहीं, उसके हृदय के बीच के मां भगवान को छोड़ करके और कोई बात की इच्छा भी नहीं रहती, किसी में प्रीति भी नहीं रहती, और अपने मुख से थी जो कि तू कहता है भगवान की बात ही कहता रहता है, दूसरी बात नहीं कहता, वो जो कुछ अलापता है तो भगवान के विषय में, भगवान के गुण प्रभाव करता है इसकी बातों के विषय में, कभी भजन करने लगता है, कभी एक दूसरे कहने लगता है, कभी चुप हो जाता है, तो ये सब लक्षण उससे हो जाते हैं। जब भगवान के अनंत प्रेम में मुग्ध हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति के वहां भगवान विलंब नहीं करते, उस समय के बीच के वहां रोमांच बार बार होते हैं, आशीर्वाद के धोने लगते हैं, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, कंठ रूक जाते हैं, वाणी गदगद हो जाती है, और कभी उसकी अवस्था पागल की माफक, कभी उसकी अवस्था बरोड़ की माफक, कभी उसकी अवस्था गुणवंत की माफक, कभी उसकी अवस्था एक विलक्षण हो जाती है, क्योंकि उसको अपने आपका होश नहीं, इधर उधर निकलता है, एक ढूंढ रहती है कि भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, अब भगवान के लिए वो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, और भगवान के मिलने के बाद के बीच के वहां बस एक प्रकार का उसकी अवस्था बदल जाती, उसके अवस्था जो है तो बदल जाती, तो उसके मत कैसे लगते जैसे लगते हैं परमात्मा की प्राप्ति के बाद ये बतलाते हैं। अजिता सर्वभूताना सर्वभूताना मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरहंकार समझो कै सुख कमी अदृष्टास्त्र भूताना सारे भूतों के बीच के वहां देश का अत्यंत अभाव हो जाता है, किसी में चिंतित मात्र भी वैर या द्वेष नहीं रहता, किसी भी प्राणी में केवल मनुष्य में नहीं पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य देवता आदि किसी के वहां न तो द्वेष रहता है न वैर रहता है, और सबके ऊपर उसकी और दया दिखती है, हेतु रही तो दया दो, हेतु रही थे सबके ऊपर दया करता है और सबसे प्रेम करता है, या जो प्रेम है हेतु ही प्रेम है, हेतु ही दया है, जैसे भगवान का प्रेम हेतु रहित होता है और दया भी हेतु रहित होती है, भगवान जैसे सब भूतों के सुहृद होते हैं वे भी सब भूतों के सुहृद होते हैं, यानी कहो किसके बीच के वहां हेतु रहित बात तो नहीं कही, नहीं कही तो क्या है, भाव से लेनी चाहिए, आगे का भाव देखो निर्ममो किसी के मां ममता नहीं, न शरीर के मां ममता है, न कोई कुटुंब के मां ममता है, न रुपयों के माँ न ऐश्वर्य के बीच के माँ, किसी में भी मेरापने का भाव नहीं। तो जहां ममता को लेकर के प्रेम होता है, दया होती है, वो हेतु रहित दया नहीं, हेतु रहित प्रेम नहीं। जैसे गाय का अपने बच्चे में प्रेम होता है तो वो एक प्रकार से ममता को लेकर के है, मोह को लेकर के है। जैसे माता का पुत्र में प्रेम होता है तो वो स्वार्थ को लेकर के है, वो मोह को लेकर के है, वो आसक्ति को लेकर के है, ममता को लेकर के है। किंतु उसके माँ किसी भी प्रकार से ममता नहीं, और ममता न होने का जो एक अभिमान होता है कि मैं निष्कामी हूं, या किसी के बीच के माँ मेरी आसक्ति नहीं, प्रेम नहीं, ऐसा जो अहंकार होता है, उस अहंकार से वो रहित होता है। उसके देह के बीच के माँ कोई धर्मी नहीं रहता, कोई भी एक अहंकार करने वाला उसका कोई मालिक होकर के नहीं रहता, निर्मोह निरहंकार है। और सुख और दुख की जब प्राप्ति होती है तो उसमें कम भाव रहता है। जब देह में अहंकार ही नहीं तो कौन सुखी रखी, अज्ञानी चाहिए वो।